नमस्कार श्रोताओं, छिंदवाड़ा उबालन से आपका दोस्त योगेश। आज का हमारा विषय है, हमारा मुखिया कैसा हो। मध्य प्रदेश में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसी चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से गांव की सरकार बनाई जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज का विषय हमारा मुखिया कैसा हो रखा है, जिसमें एक मुखिया कैसा हो, मुखिया में क्या गुण होने चाहिए, मुखिया ग्रामीण विकास में किस तरह अपनी भूमिका निभा सकता है, साथ ही एक मतदाता अपने मुखिया में क्या गुण देखता है, और इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एडवोकेट मधुकर जी गायकवाड़ सर जुड़े हुए। गायकवाड़ सर, मोबाइल होने पर स्वागत सर आपका।
जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार
सर। त्रिस्तरीय पंचायत राज गांव के विकास में कितना कारगर साबित हो रहा है सर?
अभी यदि हम लोग पंचायत व्यवस्था को देखें, 1959 में जब राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायत व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, नेहरू जी ने जब उसकी शुरुआत की थी, और हमने जब बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था 1957 में, तो हमने एक अवधारणा बनाई थी कि 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था का निर्माण हमको करना है। तो आपको जानकारी होगी कि भारत में करीबन 6,45,000 गाँव है, उसमें से करीबन 30,000 पंचायतें एमपी में आती है, मतलब 52,000 के लगभग गांव है एमपी में और 30,000 के लगभग पंचायत है। तो आप ये मान के चलिए कि सत्ता का जो विकेंद्रीकरण हुआ है, सत्ता का जो वितरण किया गया है अधिकारों का बंटवारा करके, जो अधिकार दिए गए निचले स्तर पे, क्योंकि पंचायत सबसे बड़ी बुनियाद है, क्योंकि आपको शायद जानकारी होगी गांधी जी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है, तो गांव के विकास की बुनियाद के लिए सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई ग्रामीण स्तर पर बहुत मजबूत होनी चाहिए, और यदि मजबूत बुनियाद व्यवस्था निर्माण होता है तो गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा, क्योंकि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में कन्वर्ट करना है, तो उनकी अवधारणा का उद्देश्य है कि वहाँ बुनियादी चीजें उपलब्ध हो। लेकिन आज भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, अभी मैं कांडोना में देख रहा था एक गांव की, बहुत सारे लोग ध्वज ध्वज लेके सामने आए थे कि भाई हम मत का बहिष्कार करेंगे, हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि आज भी वहां पे इतने विकास के बातों के बावजूद भी वहां सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, तो ये वाली स्थिति नहीं बनना चाहिए, बुनियादी आधारशिला है पंचायत हमारी विकास। जी
सर, क्या एक प्रतिनिधि के रूप में शिक्षा का कोई मापदंड होना चाहिए एक प्रतिनिधि के लिए सर?
जी जी, जैसे देखिए अभी भारत का एक राज्य हरियाणा और काफी उन्नतशील राज्य है, विकास की मुख्य धारा में है वो, तो वहाँ पे 10वीं मतलब एक स्थानीय निकाय में जो भी व्यक्ति भाग लेगा या चुनाव प्रतिनिधि के रूप में खड़ा होगा, उसके लिए कम से कम 10वीं पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि उसमें शिक्षा के साथ साथ समझ का होना बहुत जरूरी है, वो चीजों को पढ़ सके, जान सके, सरकार की नीतियों को जान सके, सरकार की नीतियों को सही रूप से क्रियान्वित कर सके, अधिकारियों के साथ वो अपनी बात रख सके, चर्चा कर सके, क्योंकि पंचायत की सबसे बड़ी समस्या रही है ये कि जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत बड़ा गैप है यहाँ, क्योंकि जो प्रतिनिधि होते वो उतने जानकार नहीं होते, साक्षर नहीं होते, तो उसमें अधिकारियों के साथ वो अपनी बात नहीं कह सकते, हालांकि उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था है, लेकिन प्रशिक्षण केवल व्यावहारिक धरातल पर दे रहा है, लेकिन उनकी खुद की जो समझ है, निर्णय लेने की खुद की जो क्षमता है, विकास के पहलुओं के ऊपर बात करने के लिए उनके बीच में जो क्षमता होनी चाहिए वो नहीं होती, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए। और अभी इस बार भारत सरकार ने जिस तरह का मंत्रिमंडल निर्मित किया, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे, तो उसका फायदा भी हमको दिखता है, और बहुत अभी राजस्थान में देखिए बहुत सारी महिलाएं MBA लड़कियां, इंजीनियरिंग की हुई लड़के पंचायत की प्रमुख बन के बहुत अच्छा विकास कर रही है और अच्छा उदाहरण पेश कर रही है, वो ऐसा लगता होना चाहिए शिक्षा।
सर, क्या प्रधान के निर्वाचन में आरक्षण प्रणाली के द्वारा क्या सभी वर्ग के लोगों को क्या प्रतिनिधि बनने के लिए क्या आरक्षण प्रणाली के माध्यम से सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधि करने का यह है?
देखिए, हमारा जो है ना लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का अंग है हमारी पंचायत व्यवस्था, तो उसमें समाज के सभी वर्गों को यदि आरक्षण पद्धति से प्रशासनिक इकाई में या प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल करके उनके अधिकारों की रक्षा की जा रही थी, तो गलत नहीं है, ऐसा होना चाहिए
जी।
हाँ, और बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिल रही है। इससे क्या हो रहा, हमारा लोकतांत्रिक स्वरूप, अभी देखिए अमेरिका में बैठक भी थी लोकतंत्र को लेकर, तो उसमें मोदी जी ने, जो हमारे जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यही कहा कि उसमें समाज का सभी, समाज के सभी वर्ग, और उसमें खास करके पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम में जो पारदर्शिता होती है विकास बहुत अच्छा होता है, और समाज के सभी वर्गों को यदि भागीदारी मिलती है तो समाज से जुड़े सभी वर्गों के जो समस्या है वो सामने रखने में बहुत मदद मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आरक्षण व्यवस्था अच्छी है और उसमें कोई गलत नहीं है, समाज का सभी वर्ग उसमें शामिल हो रहा ना, तो उसमें गलत कहाँ है, सभी को समानता का अवसर मिल रहा है।
सर क्या आप भी एक मतदाता है, आप किस तरह का मुखिया चुनना चाहोगे?
देखिए जहाँ गाँव, मतलब गाँव की जहाँ तक बात है, तो गाँव विकास की आधारशिला, तो मैं चाहूंगा कि मैं जिस अपने प्रतिनिधि को चुनो तो वो सबसे पहले तो राजनीति को केवल व्यवसाय न माने। अभी राजनीति व्यवसाय और फैशन बन गया है, क्योंकि वास्तव में राजनीति का जो उद्देश्य है वो मानव कल्याण है, जनहित के कार्यों को पूर्ति करने वाले होना चाहिए, लेकिन हम लोग फैशन बना चुके हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के हितों के लिए राजनीति करते हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसा प्रतिनिधि होना नहीं चाहिए, वो कर्मशील हो और काफी समावेशी विकास को लेकर चलने वाला हो। दूसरी चीज है कि उसमें वो भाव हो कि मुझे अपने गांव का विकास करना है, मुझे, पर यहाँ देखा गया है कि पंचायत, अभी मध्य प्रदेश की ऐसी कई पंचायत थी, हमारे छिंदवाड़ा जिले कई पंचायत थी, कि उसमें आर्टिकल 40 का यूज करके कई बार बर्खास्त भी किया गया। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम सही व्यक्ति को चुन नहीं पा रहे या व्यवस्था का सही निर्माण नहीं कर पा रहे। इसलिए जरूरी है साहब की मतलब सभी को उसमें शामिल करें और विकास की मुख्य धारा में पंचायत को मतलब लाने की कोशिश होनी चाहिए।
क्या सर सरकार की योजनाओं को गांव के विकास में किस तरह सफल बना सकता है मुखिया? सर
एक बहुत बड़ी भूमिका होती है सर, बहुत बड़ी, बस उसमें क्रियान्वयन करने की क्षमता होनी, मैंने कहा ना मुखिया हमारा ऐसा हो जिसमें कर्मशीलता का भाव हो, वो मतलब सही में जनहित करने वाला हो, व्यावसायिक हित को नहीं, उसके व्यक्तिगत हितों को साधने वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा देखने में आ रहा है कि कमीशन की व्यवस्था पे काम हो रहे विकास के, तो ऐसे में फिर व्यवस्था कैसे चलेगी, जबकि गवर्नमेंट पंचायतों को राज्य वित्त आयोग जो आर्टिकल 243(6) के अंतर्गत गठित किया गया, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 30 दिसंबर 1993 को जब पारित किया गया, और 1994 में जब हमने पहली बार चुनाव किए, मैं खुद पिपला नारायणवार का हूँ, मेरी पंचायत को सबसे अच्छी पंचायत का दर्जा मिल चुका है, अवार्ड मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि काम करने वाले व्यक्ति होना चाहिए, जब काम करने वाले व्यक्ति रहेगा तो व्यवस्था में कमी नहीं है साहब, दोष कुछ नहीं, व्यवस्था में कोई दोष नहीं है, जो पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो काम सही करे, कानून का क्रियान्वयन सही करे, तो विकास अपने आप दिखता है। हमारे यहाँ पे सरकारी सिस्टम को ऐसा हमने समझ के रखा है कि बस पगार मिल रहा है, काम करना हमको कैसी काम करना है, निजीकरण को बढ़ावा क्यों मिल रहा है, इसी वजह से, क्योंकि हम लोग सरकारी सिस्टम को ढर्रा बना के रखा है, हम काम ही नहीं करना चाहते। कई सारी पंचायतें ऐसी है, अभी हमारे पड़ोस में गांव है पंडरी, वहाँ पे देखा इतना अच्छा विकास हो सकता है पर इतनी गंदगी है साहब, जो वहाँ से जाने की इच्छा नहीं, मतलब वहाँ उदाहरण किस बात का है कि वहाँ का सरपंच जो है क्रियान्वयन करना ही नहीं चाहता, बस काम ही नहीं करना चाहता, पता नहीं क्यों नहीं करना चाहता, इतना गंदा है सर गाँव, पूरे छिंदवाड़ा जिले में शायद सबसे ज्यादा गंदगी होगी वहाँ, है ना। तो काम करने वाले व्यक्ति की जरूरत है, काम करने वाले व्यक्ति है, तो सरकार से तो इतना अनुदान आता है, आपको शायद पता होगा पंचायत जो 11वीं अनुसूची का सब्जेक्ट बनाया गया था पंचायत राज अधिनियम के बाद संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत, 29 विषयों पे काम कर सकती पंचायत, 29 विषयों पे, और उस 29 विषयों पे यदि वो काम करे तो पंचायत के पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा पैसे का जो आवंटन होता है उसको खर्च कर सके, गवर्नमेंट बहुत पैसा देती है, कई बार तो फंड रिफंड हो जाते हैं ना
जी।
कभी हम लोग देखा विधायक लोग या जो हमारे मध्य प्रदेश में कई ऐसे विधायक है कि उनका जो वार्षिक फंड आता है उनके लिए वो भी खर्च नहीं हो रहा, वापस हो रहा है, तो आप अंदाजा लगे कि काम करने की नियत का भाव क्या है जी।
सर एक मुखिया ग्रामीण विकास पे जो चाहे गवर्नमेंट की कोई भी योजना हो, जैसे नल जल योजना हो, मनरेगा हो या और भी कोई योजना हो, इसके क्रियान्वयन को लेकर किस तरीके से एक अपने जमीन स्तर पर गांव के लोगों को एक सहायता क्यों नहीं कर पा रहा, क्या कठिनाई आ रही है उनके सामने एक प्रतिनिधि के रूप में?
देखिए साहब, कठिनाई ये कुछ नहीं है, गवर्नमेंट बहुत अच्छी व्यवस्था दे रही, कठिनाई नहीं है। बात है कि उस काम के क्रियान्वयन में पारदर्शिता होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात पारदर्शिता है। और दूसरी चीज है कि जो मुखिया हमारा वो क्रियान्वयनशील व्यक्ति होना चाहिए, काम करने वाले व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि भाई एक पंचायत में ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी पंचायत में वो काम हो रहा ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने जिस मुखिया को चुना है वो ऐसा चुने कि जो कर्मशील हो, क्रियाशील हो, काम करने वाला हो और जनहित में करे। वो तो केवल अपने स्वार्थ सिद्धि को लेकर काम करते हैं। सड़क देखो तो चौड़ी बनने के बजाय छोटी बनती है, नाली बड़ी बनने के बजाय छोटी बनती है। आईटीआई लगा के भी हम जब जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि कितना करप्शन हो रहा है। जिस तरह की व्यवस्था का सचिव और सरपंच का गठबंधन हमारे छिंदवाड़ा जिले में दिखा, बहुत सारे सचिव और सरपंच जेल में है, सोचिए अंदाजा लगाइए छिंदवाड़ा के, तो कमी कहाँ है? फिर कमी क्रियान्वयन करने में, योजना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लागू कर सकते हैं ये लोग, ईमानदारी से काम करें। इन्होंने व्यवसाय बना के रखा है, इन्होंने पैसा कमाने का जरिया बना के रखा राज्य की व्यवस्था के अंतर्गत, तो फिर काम कैसे होगा सर? महाराष्ट्र जाइए, वहाँ की बहुत सारी पंचायतें मैंने देखा, बहुत अच्छा, वहाँ के सरपंच बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि गांव है वो। अगर सड़कें वहाँ, स्वास्थ्य सुविधा है वहाँ, बुनियादी सुविधा है, सब कुछ है। मैं अपने आसपास के गांव को देखता हूँ, कुपवाड़ी को देखता हूँ, गंदगी का आलम भरा पड़ा है। तो क्या वहाँ पैसा नहीं आता क्या? वो तो गोकुल ग्राम के अंतर्गत आता है, लेकिन वही है सफल संचालन के लिए एक तो उसका पढ़ा लिखा होना चाहिए, तब तो उसके अंदर समझ होगी। दुनिया के बाहर जाके देखे, दूसरे राज्यों में जाके देखे कि यहाँ की पंचायतें कैसे काम करती है, मुझे कैसा प्लान बनाना पड़ेगा, विकास के काम में कहाँ कहाँ दे सकता हूँ, रोजगार का सृजन कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए सर पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आंध्र प्रदेश में कई ऐसी पंचायत हम लोग देखे हैं कि वहाँ लगता ही नहीं कि वो कोई छोटा सा शहर जैसा लगता है साहब, वहाँ वो वहाँ के सरपंच पढ़े लिखे, वो सर्च करते, घूमते, पता करते कि कैसे व्यवस्था को कर सकते। अब यहाँ पे तो ये देखने में आया कि सर पत्नी की सरपंच बन गई, सारा क्रियान्वयन पति करते। अभी गोरगांव की पंचायत का देखिए क्या हाल है, वहाँ जो पति महोदय बैठे थे, पत्नी सरपंच थी, भगा दिया अधिकारियों ने, व्हाट इज, तुम लोग कौन हो बोले, संवैधानिक पद पे हो क्या? ये जो चीज है भ्रष्टाचार की, ये इसके ऊपर नकेल डालने की सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा इन्होंने पंचायत को एक तरह का करप्शन का अड्डा बना के रखा, बहुत दिक्कत है साहब। पैसा बहुत आता है, गवर्नमेंट बहुत पैसा भेजती है, बहुत पैसा आता है और बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, बशर्ते कि ईमानदारी से काम करें। बाकी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सिस्टम फेल होता हुआ दिख रहा है पंचायत व्यवस्था की वजह से। जबकि हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण काय के लिए किया था कि निचले स्तर तक सत्ता जाए, प्रजा का केंद्रीकरण मतलब विकेंद्रीकरण हो, काम हो अच्छे से हो। कई जगह पे अच्छे काम हुए, अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन सब जगह क्यों नहीं हो पा रहे? तो उसका कारण है कि हमारा मुखिया सही हो, उसकी छवि अच्छी हो, काम करने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, तभी तो इस दुनिया को जानेगा, समझेगा कि मैं कौन से विकास के काम कर सकता हूँ। अभी आपके रामाकोना में जो क्या नाम था उनका, अंसारी जी, बहुत अच्छा काम किया अभी कोरोना काल में, उनका सामने आए वो। तो ऐसे काम करने वाले लोग मिले तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, बस वो अपना व्यवसाय ना बनाए पंचायत बस।
सर, एक मतदाता के तौर पर एक कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे कि उसमें क्या गुण होने चाहिए, उस वैसे मतदाता को, मतदाता एक प्रतिनिधि को चुने सर क्या गुण होने चाहिए सर?
देखिए साहब, एक्चुअली पंचायत भी एक प्रशासन है, पंचायत भी एक प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है वो। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहली जरूरत होती है लीडरशिप की, नेतृत्व क्षमता हो। दूसरी चीज, उसमें चीजों को समझने की क्षमता हो, वो अपनी चीजों को समझे, अपनी बात रख सके। सबसे बड़ी बात तो अधिकारियों के सामने कई सरपंच देखे बात नहीं रख पाते, क्योंकि उनकी पढ़ाई का स्तर नहीं होता, उनका समझ नहीं होती। दूसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जिन प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं उनकी व्यक्तिगत छवि का बहुत महत्व तो रहता है सर। अभी देखिए, हमारे संसद में 144 लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, गांव में भी इसी तरह के लोग हैं। लोगों को सबसे पहले एक चीज समझना होगा कि चुनना किसको है। आप गलत लोगों को चुन रहे हो, आप पढ़े लिखे लोगों को चुनिए। भारत में बड़ी विडंबना है साहब कि आधार कार्ड के जो प्रमुख थे नंदन नील की, नहीं चुनाव हारते, टीएन सेशन साहब चुनाव नहीं खड़े हो पाते। ये जो प्रवृत्ति है, योग्य और सक्षम व्यक्तियों को चुनने की प्रवृत्ति यदि बढ़ गई भारत में, तो आप देखिए भारत फिर से एक बार सोने की चिड़िया बन सकता है। तो हमारा प्रतिनिधि योग्य हो, उसमें समझ हो, कार्यों की करने की समझ हो, उस पर क्रियान्वयन करने, अधिकारियों से काम तालमेल सामंजस्य बिठा के काम करने की क्षमता हो, अपने अधीनस्थ लोगों के साथ काम करके काम निकालने की क्षमता होनी चाहिए उसमें, मतलब पूरे मैनेजमेंट की जो क्वालिटी होती है वो सब होनी चाहिए उसके अंदर, तो बहुत अच्छा हो सकता है। और बहुत लोग सर आप बहुत अच्छा करते भी है, बशर्ते कि मतदाता उस चीज को समझे, वो अपनी जात पात को लेकर, पैसे को लेकर, इसको उसको लेकर वोट न दे, क्योंकि हमारा विकास नहीं होगा, हमारे गांव की सड़कें नहीं ठीक होगी, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी, शराब देखिए साहब पूरे गांव में शराब भट्टियां खुल चुकी, जबकि पंचायती राज व्यवस्था के तहत पूरे गाँव से भट्टियां हट सकती होगा, इसका उदाहरण है बेड़ी, इसका उदाहरण है, हो सकता है काई नहीं हो सकता, पंचायती राज में बहुत सारी व्यवस्था है सर, बहुत सारी, मैंने कहा ना 29 विषयों पे काम कर सकती वो, बस उस तरह का सक्षम व्यक्ति होना चाहिए उस पे काम करने वाला, राजनीति से परे जाके विकास के काम करे, बिल्कुल विकास हो सकता है, बहुत अच्छा विकास हो सकता है।
तो ये थे एडवोकेट मधुकर जी गायकवाड़, जिन्होंने हमारा मुखिया कैसा हो इस विषय पर जानकारी साझा की। साथ ही स्थानीय पंचायत राज में गाँव के किस तरह विकास हो सकता है, साथ ही कैसा मुखिया चुनना चाहिए और एक मुखिया को शिक्षा का क्या मापदंड होना चाहिए, साथ ही एक मतदाता के तौर पर एक मुखिया किस तरह चुना जाए, साथ ही सरकार की योजनाओं को गांव में किस तरह क्रियान्वित किया जाए, इन विषयों पर मधुकर जी ने मोबाइल वाणी के साथ जानकारी साझा की। मधुकर जी मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी जी नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
छिंदवाड़ा वालेन से आपका दोस्त योगेश।